नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना कर्मियों के लिए निर्देश पुस्तिका जारी की। यूपीआई लेनदेन का नया कीर्तिमान, इस वर्ष मई में 14 अरब से अधिक लेनदेन हुए। असम बाढ़ में मृतकों की संख्या 14 हुई, 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भागों में अगले 2 दिन में भीषण गर्मी में राहत की भविष्यवाणी की। और फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। कल ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव और कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी होगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने कहा है कि राज्य में 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र हैं जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां 2 मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में 1-1 मतगणना केंद्र है। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो 1 मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित है। और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी। 179 प्रेक्षक हैं जो काउंटिंग पे नजर रखेंगे।
झारखंड में मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 14 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और पहला रुझान 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 14 संसदीय क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती शाम 4 बजे तक पूरी होने की संभावना है। इस बार डाक मतपत्र अधिक हैं। शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए मतगणना केंद्रों और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से होगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में भरतनगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी, पूर्वी दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल परिसर, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में गोल मार्केट, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में शाहबाद दौलतपुर, पश्चिमी दिल्ली में द्वारका सेक्टर 3 और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सिरी फोर्ट में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसी बीच चुनाव आयोग भी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 25 तारीख को आयोजित किया गया था, जहां 58.69% मतदान दर्ज हुआ था। आकाशवाणी समाचार दिल्ली से आदर्श।
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है। प्रदेश की 60 संसदीय विधानसभा में भाजपा के 36 सीट पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने 10 सीट निर्विरोध जीती थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने श्री खांडू और मंत्रिपरिषद से नई सरकार के शपथ लेने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। वहीं सिक्किम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने एक तरफा जीत हासिल की। 32 सदस्यीय विधानसभा में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट जीती, 1 सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली। पश्चिम बंगाल में 12-7 और मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 7वें चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। पुनर्मतदान का निर्णय चुनाव अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और चक्रवात रेमाल के बाद की स्थिति सहित कई विषयों पर कल समीक्षा बैठकें की। देश में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आग की घटनाओं से निपटने और उन्हें रोकने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त अभ्यास किए जाने चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशमन और बिजली सुरक्षा की नियमित जांच की जानी चाहिए। वहीं रेमाल चक्रवात के प्रभावों की समीक्षा बैठक में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तूफान प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देना जारी रखेगी। भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने मई में 20 खरब 45 अरब रुपए के 14 अरब 14 करोड़ लेनदेन का नया कीर्तिमान स्थापित किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मई की तुलना में ये लेनदेन 49% अधिक है। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से मई के वर्तमान आंकड़े मूल्य और मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक हैं। वहीं तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस लेनदेन की मात्रा मामूली रूप से 1.45% बढ़कर मई में 558 मिलियन हो गई, जबकि अप्रैल में यह 550 मिलियन थी। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में मात्रा में 12% और मूल्य में 15% की वृद्धि देखी गई। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा और धुबरी में बढ़ रहा है। वहीं कोपिली, बराक, धनसिरी, बुरहदेहिंग, गौरांग और कुशियारा नदियों का जलस्तर भी कई स्थानों पर बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत से बाढ़ में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। कछार में 2 और नागांव जिले में 1 व्यक्ति की जान गई है। कछार जिले में 1 व्यक्ति और 1 बच्चा लापता है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
असम में बाढ़ के कारण 13 जिलों के 567 गांवों के 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित है और राज्य भर में 8000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्रों क्षतिग्रस्त हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 193 राहत शिविर और 82 राहत वितरण केंद्र खोले हैं और बचाव एवं राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लोगों की जान चली गई है। कई जिलों में बाढ़ के पानी से 103 सड़कें, तटबंध और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गया है। न्यू हाफलोंग चंद्रनाथपुर खंड के बीच ट्रैक की क्षति को देखते हुए एनएफ रेलवे ने इस रूट पर ट्रेनों के रद्द और आंशिक रूप से रद्द किया गया है। अमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिमोत्तर मध्य पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि इन क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।
मौसम विज्ञान विभाग से यही अपडेट है कि जो हीटर सीवियर हीटर कंडीशन चल रहा था उसका काफी रिडक्शन हो चुका है और ओनली आइसोलेटेड प्लेसेस में है, जो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बाकी जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब जगह में हीटवेव नहीं है बिहार में, और यहाँ बारिश हो चुका है और मानसून का भी और आगे आगमन का चुना है।
इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिन बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण भारत में अगले 7 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 4 दिन में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। उधर श्रीलंका में हुई भीषण बारिश से पूरे द्वीप में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 5000 से अधिक परिवारों के 19000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने कहा कि राजधानी कोलंबो सहित 7 जिले प्रभावित हुए हैं। 4000 से अधिक घरों को आंशिक क्षति हुई है जबकि 28 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। श्रीलंकाई सेना बचाव कार्यों में लगी हुई है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की एक महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने जिनेवा में कल पूर्ण सत्र में समापन भाषण दिया। पिछले छह दिन के समिति के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए श्री चंद्रा ने उन बिंदुओं का उल्लेख किया जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य को आकार मिलेगा। श्री चंद्रा ने कहा कि भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार की अवधारणा के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए सभी विषय से प्रेरित होकर एक परिवार के रूप में सबने काम किया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और एबडेन ने ब्राजील के मार्सिलो जर्मन ऑरलैंडो लूज को 7-5, 4-6, 6-4 से हराया। तीसरे दौर में बोपन्ना और एबडेन का सामना भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेस और वेरेला मार्टिनेस की जोड़ी से होगा। उधर आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात वेस्टइंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हरा दिया। गयाना में वेस्टइंडीज ने 137 रन का लक्ष्य 19 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने नाबाद 42 रन बनाए। चेज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बारबाडोस में इस समय नामीबिया और ओमान का मैच जारी है। आज ही दूसरा मैच न्यूयॉर्क में रात 8 बजे श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। उधर लंदन में एफआईएच प्रो हॉकी लीग में कल भारत की पुरुष टीम ब्रिटेन से 1-3 से पराजित हो गई। भारत का अगला मैच शनिवार को विश्व चैंपियन जर्मनी से होगा।
देश भर में अमूल दूध का मूल्य 8 से 2 रूपये प्रति लीटर बढ़ गया है। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने दूध के पॉलीपैक की कीमत में 2 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे पहले फरवरी 2023 में अमूल दूध की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। नई बढ़ोतरी के साथ आधा लीटर अमूल भैंस का दूध 36 रूपये, आधा लीटर अमूल गोल्ड दूध 33 रूपये और आधा लीटर अमूल शक्ति दूध 30 रूपये का हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवली। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सत्तारूढ़ पार्टियों के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है अरुणाचल में बीजेपी की हैट्रिक, सिक्किम में एसकेएम की रिकॉर्ड जीत। लोकसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कल खुलेगा ईवीएम का पिटारा, पता चलेगा जनता ने किस पर किया भरोसा। राजस्थान पत्रिका ने एग्जिट पोल के जारी होने के बाद पार्टियों के गुणा भाग में जुटने को पहली खबर बनाते हुए लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंकड़ों से दूर सरकारी कामकाज में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना कि आग लगने की घटना रोकने और लू से बचाव के उपाय करें अधिकारी हिंदुस्तान में प्रमुखता से है। अमर उजाला ने लिखा है 7 बैठकों के साथ एक्शन में मोदी, भीषण गर्मी और चक्रवात रेमल से प्रभावित हुए लोगों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी पर अखबारों ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस चिंता को दिया है वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी। अमर उजाला ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है जंगली जानवरों की भी नींद उड़ा रहा है बढ़ता तापमान। पत्र के अनुसार अच्छी नींद न आने से जानवरों के व्यवहार में आता है परिवर्तन। दैनिक जागरण को लगता है दिल्ली में जून के अंत तक आ सकता है मॉनसून। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना को दैनिक भास्कर ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है दोगुनी तैयारी, चार धाम यात्रा में उमड़ी बेहिसाब भीड़ से अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लिया सबक। श्री माता वैष्णो देवी के कटरा आधार शिविर यात्रा मार्ग सहित पूरा क्षेत्र अब तम्बाकू मुक्त होने की जानकारी हरी भूमि में है। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक के लिए फ्रांस में तैयारी पर दैनिक भास्कर ने लिखा है सबसे बड़े रेस्टोरेंट में 3 विशेष शेफ की निगरानी में बनेंगे 500 तरह के व्यंजन लेकिन फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे। पत्र लिखता है फ्रांस अनोखी पारंपरिक पाक कला के लिए प्रसिद्ध है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना कर्मियों के लिए निर्देश पुस्तिका जारी की। यूपीआई लेन देन का नया कीर्तिमान, इस वर्ष मई में 14 अरब से अधिक लेन देन हुए। असम बाढ़ में मृतकों की संख्या 14 हुई, 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भागों में अगले 2 दिन में भीषण गर्मी में राहत की संभावना व्यक्त की। और फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।